हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 20। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आशानुलम्भितभुजो कनकावधातौ संकीर्तने कपितराव कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासुदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अमृतमयी शब्दों को मेरे साथ साथ रसास्वादन करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुढाकेश सर्वभूताशय स्थितः
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकीश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकीश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च
शब्दात् अहम् आत्मा गुडाकेश अहम् मतलब मे आत्मा यानी सोल आत्मा जीव गुडाकेश हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन सर्वभूत समस्त जीव आशय स्थित हृदय में स्थित अहम् मे आदिश्च मध्यम च आदि यानी उद्गम च यानी भी मध्यम यानी मध्य च यानी भी भूतानाम समस्त जीवों का अंत एव च अंत यानी अंत एव निश्चय ही च तथा अनुवाद भगवान कहते हैं हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से भगवान के इन अद्भुत शब्दों को हमें समझाएंगे हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है अतः भगवान ऐसे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ प्रारंभ होता है अतः वे प्रधान महत्तत्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं होता वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में प्रवेश करते हैं वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के सफुलिंग की उपस्थिति के कारण ही विद्यमान रहता है बिना आध्यात्मिक सफुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है प्रकृति आदि सर्वभूतांतरात् अंतर्यामी सर्वशेषी च नारायण परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है श्रीमद् भागवतम में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है विष्णुस्तु
त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः।
भगवान इस लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोधक्षाय विष्णु, गर्भोधक्षाय विष्णु तथा क्षीरोधक्षाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5.47 महाविष्णु या कारणोधक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है।
यह कारण आरवजले भजति स्म योगी, निद्रा अनंत जगदंड सरोमकूप, आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्तिम्, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के स्वरूप में कारणव में शयन करते हैं, अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। श्रील प्रभुपाद की जय हो।
मोकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति खिरं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्।
चतुश्लोकी भगवत गीता के महत्व को श्रवण करने के बाद अर्जुन के मन में ऐसा आया कि मैं कृष्ण की हर एक बात पर विश्वास करता हूँ, मुझे पूरी श्रद्धा है कि कृष्ण ही सब कुछ है, परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र पर। लेकिन फिर भी अब क्योंकि कृष्ण सब कुछ है तो उनके विषय में श्रवण करने से आनंद आ रहा है, तो कृष्ण से निवेदन किया कि कृष्ण मुझे अपने विषय में विस्तार से बताइए। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा, बता तो रहा हूँ परंतु विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, ना तुम्हारी इंद्रियों में वो शक्ति है कि तुम मेरे विस्तार को श्रवण कर सकोगे, और ना ही तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम मेरे विस्तार को श्रवण कर सको। तो मैं तुम्हें बताऊंगा परंतु केवल जो प्रमुख हैं, प्राधान्यतः गुरु श्रेष्ठ, सिर्फ जो प्रमुख हैं, प्रधान हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और आज भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन अपने मुखारविंद से कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह 10वां अध्याय है जिसका नाम है विभूति योग, यानी भगवान की विभूतियों की द्वारा भगवान के साथ अपना योग जोड़ना। तो आज भगवान अपनी सबसे प्रधान विभूति के विषय में बता रहे हैं। इस एक श्लोक को भी यदि हम समझें, भगवान मुख खोल रहे हैं। अभी जस्ट भगवान ने पहला श्लोक उच्चारण किया है कि मेरी विभूति क्या है। भगवान बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, लेकिन भगवान इतने वाक चतुर हैं, जब वो बोलते हैं तो एक शब्द में ही सारे ब्रह्मांड को समेट के दे देते हैं। तो बहुत ही सुंदर भगवान आज अपनी विभूति के प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला शब्द भगवान कहते हैं, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश कहते हैं निद्रा को जीतने वाला। शास्त्र में निद्रा का मतलब है अज्ञान। यहाँ भगवान सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हे गुड़ाकेश, इसे केवल गुड़ाकेश ही समझ सकते हैं। जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हें तो समझ में भी नहीं आएगा कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। वास्तव में यदि शरीर का कनेक्शन आत्मा से छूट जाए तो फिर शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। आपने देखा है कभी किसी ऐसे जीव को जिसकी आत्मा निकल गई हो, वो भले ही देखने में वैसा ही लगे जैसा कि उस समय था जब उसके अंदर आत्मा थी,
परंतु जैसे ही आत्मा उसके अंदर से निकल गई, वो अब किसी काम का नहीं रहा। जो लोग बोलते थे कि हम इससे प्रेम करते हैं, अब वो उसे घर से निकालने पर तुले हुए हैं। वही उसे जलाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब उसके अंदर आत्मा नहीं है। वो भले ही कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति था, आज वो उसकी बुद्धि कोई काम नहीं आएगी। वो बुद्धि उसमें से नहीं निकाली गई, उसके अंदर ही है, परंतु आत्मा निकल गई। वो भले ही कितना ही सुंदर व्यक्ति जिसके साथ हम समय बिताना चाहते थे, आज वही सुंदर व्यक्ति वैसे ही सुंदरता के साथ बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, परंतु अब उसके साथ कोई भी समय बिताना नहीं चाहता। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी आत्मा निकल गई है। वास्तव में भक्तों, यहाँ संसार में जितने भी जीव हैं, यहाँ भगवान ने कहा सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण जीवों के हृदय में रहता हूँ। सर्वभूता, कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवता हो, आशय स्थित, उसके हृदय में मैं आत्मा बनकर परमात्मा के स्वरूप में बैठा हुआ हूँ, तभी वो कोई कार्य कर सकता है। वास्तव में आज हमें बहुत अहंकार होता है ना अपने ऊपर, कि ये कार्य मैंने किया, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, सब लोग कितना मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, यू आर लुकिंग अमेजिंग, आप कितने सुंदर दिखते हो, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे लगते हो, आप कितने बुद्धिमान हो, आपके अंदर कितना बल है, आपके अंदर कितना ज्ञान है। ये सारे कमेंट्स जो हमें मिलते हैं, वास्तव में वो कमेंट्स जो हैं, वो हमारे लिए नहीं होते हैं। वो हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा जब हमें यह शक्ति प्रोवाइड करते हैं, तभी हम वो कार्य कर सकते हैं। चाहे हम सुंदर हैं या शक्तिमान हैं या बुद्धिमान हैं, ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है भगवान के पास। जैसे सूर्य, सूर्य की एक किरण यदि कोई कार्य करती है, तो वो कार्य सूर्य का ही माना जाएगा ना। ऐसे तो नहीं कहा जाएगा कि सूर्य की किरण ने ये कार्य कर दिया, नहीं, ये कार्य सूर्य ने किया है ना। सूर्य की एक किरण यदि किसी वस्तु पे पड़ती है और वो जल जाए, तो क्या कहेंगे? क्या सूर्य की किरण का दोष है? नहीं, ये तो सूर्य की का पराक्रम है। यदि सूर्य के कारण, सूर्य की चंद किरणें यदि धरती पर पड़ती हैं, तो धरती यदि तपने लगती है, तो उसका कारण क्या है? पूर्ण सूर्य। इसको, इस रियलाइजेशन को समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो आत्मा है, वो भगवान का एक सफुलिंग है। भगवान सूर्य के समान है, और हमारे अंदर भगवान ने अपनी छोटी सी किरण, एक सफुलिंग स्थापित कर दिया, सर्वभूताशय स्थित। और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कैसा भी है, बुद्धिमानता का है, शक्तिमानता का है, सुंदरता का है, या जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट भगवान को जाता है। क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, वही प्रेरणा देते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, या इसकी नजर कितनी तेज है, वो बहुत दूर का भी देख लेता है ना? लेकिन वो नेत्र से नहीं देख रहा होता है, क्योंकि नेत्र तो उसके पास तब भी होते हैं जब उसकी आत्मा निकल जाती है। जब भगवान अपने आत्मा का सफुलिंग उसके हृदय से खींच लेते हैं, तब भी उसके पास नेत्र होते हैं, और आप उसे करीब जाके देख, बोलो आज बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, आंखें तो उसके पास है, क्या उसे दिखाई दे रहा है? नहीं, इसको समझना चाहिए कि हम नेत्रों से नहीं देख रहे हैं, हम आत्मा के प्रकाश से देख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें नेत्रों से दिखाई देता है, कभी अंधेरे में हम सोचते हैं कि हमारे नेत्र आज इसलिए देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत अंधेरा है, यदि रोशनी हो जाएगी तो हमें दिखेगा। परंतु यदि उस शरीर के सामने जिसके अंदर आत्मा नहीं है उसके नेत्र खुले हुए हों, कभी कभी ऐसा होता है ना, नेत्र खुले हुए हों और उसके सामने 100 वोल्ट का बल्ब भी जला दिया जाए तो क्या उसे दिखाई देगा? बल्ब की बात छोड़ो, यदि उसके सामने साक्षात सूर्य देव को खड़ा कर दिया जाए तो क्या उसे दिखाई देगा? नहीं, नेत्र भले ही वही हो परंतु देखते हम आत्मा के प्रकाश से हैं। हम समझते हैं कि हम कितना अच्छा बोल लेते हैं लेकिन यह जिह्वा से नहीं बोल रहे हम, क्योंकि जिह्वा तो उसके पास भी होती है जिसके पास आत्मा नहीं होती। क्या वो एक शब्द भी बोल सकता है? हम कभी कभी सोचते हैं यह साइंटिस्ट कितने ज्यादा बुद्धिमान हैं, इतने बड़े बड़े आविष्कार कर सकते हैं, परंतु वही साइंसदान के हृदय से भगवान यदि अपनी आत्मा के सफुलिंग को खींच ले तो क्या वो यहाँ से लेकर वहां तक चल सकते हैं? ये सारा का सारा कार्य जो इस ब्रह्मांड में, जिस भी ब्रह्मांड में जो भी जीव जो भी कार्य कर रहा है वो केवल और केवल भगवान की शक्ति के कारण है। भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के सफुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान है। यह शरीर कार्य कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। यदि आत्मा जीव से निकल जाए तो यह शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा। बिना आध्यात्मिक सफुलिंग के शरीर विकसित नहीं होगा। हम सोचते हैं हमारा बच्चा आज 1 साल का है, कल 2 साल का हो जाएगा, लेकिन अगर जिसके शरीर में आत्मा नहीं है उसे चाहे कितने ही साल तक रखो वो शरीर कभी विकसित नहीं होगा। उसी प्रकार भौतिक जगत का तत्व तब तक विकास नहीं होता है जब तक परमात्मा कृष्ण प्रवेश नहीं होता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, जैसे भगवान ने कहा अहम आदेश च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, कुछ नहीं छोड़ा, एक ही श्लोक में सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा अहम आदि, आदि का मतलब होता है शुरुआत। भगवान कहते हैं मैं आदि हूँ। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि सर्वप्रथम कृष्ण को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल अवतार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ प्रारंभ होता है। जैसे समझो भगवान अभी तक इस भौतिक सृष्टि का निर्माण नहीं किया है, अभी भौतिक सृष्टि के निर्माण करने से पूर्व की बात। आदि का मतलब है जब कुछ नहीं था तब मैं शुरुआत हूँ। तो कैसे शुरुआत करते हैं? शास्त्र बताता है कि भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब है भगवान अपने को विस्तार करते हैं। अपने अंदर से भगवान सबसे पहले बलराम जी, उसके बाद 4 व्यूह निकलते हैं, शंकरषण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर उस शंकरषण से शंकरषण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, उसके बाद फिर से शंकरषण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इस प्रकार 12 होकर फिर ये सब जो 12 हैं वो भगवान के व्यूह हैं। वो भगवान की, जब भी भगवान लीला करते हैं तो उनके साथ मिलकर जो भी लीला करते हैं, जब भी अवतार लेते हैं भगवान इनके साथ, क्योंकि कोई भी लीला करने के लिए भगवान को संघ, ये सब इनके संघ होते हैं। और उसके बाद संकर्षण से महासंकर्षण, और फिर महासंकर्षण से कारण दक्षाय विष्णु। यहाँ से बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि भौतिक सृष्टि से पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं। ये महाविष्णु जो है वो कारण व समुद्र में लेटे हैं, लेटे हुए हैं, उनका कोई कार्य नहीं है। लेटे लेटे वो क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, और जब श्वास ले रहे होते हैं तो उनकी रोम कुंपों से अनेकानेक असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो विभिन्न लोग एक ब्रह्मांड के भीतर होते हैं। जैसे एक अंड का मतलब होता है, जैसे अंडे की शक्ल होती है ना ओवल शेप में, तो ये ब्रह्मांड, जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है उसके अंदर 14 लोक हैं, है ना, तो ये पृथ्वी सेंटर में है, ऊपर 6 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं, तो ये एक ब्रह्मांड है। तो ये केवल एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड, उस वो कारण दक्षिणा विष्णु के रोम कुपों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। जब वो सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं, और जब वो श्वास बाहर में अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांडों की प्रलय हो रही होती है, वो अंदर खींच जाते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता के श्लोक के विषय में बताया 5.47, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, यह कारण जल, यह कारण व जले भजति स्म योगी निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूप। वो तो कारण जल में, कारण दक्षाई समुद्र में लेटे हुए होते हैं, निद्राम नींद में होते हैं, और जगंड सरोम कूप उनकी रोम कूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं। आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्ति, उस कारण दक्षिणा विष्णु के आधार, उन वो किसकी शक्ति पर ये कार्य कर पाते हैं, वे कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये वास्तव में महतत्व नहीं, महतत्व ये कार्य नहीं कर रहा होता है। महतत्व में क्या होता है, श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते, ऐसा नहीं है कि भौतिक प्रकृति जो है वो बाई चांस खुद ब खुद बनती है और खुद ब खुद उसका नाश हो जाता है। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे प्रधान महतत्व की आत्मा है, ये सब भगवान की योजना से हो रहा होता है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं है, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। तभी भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, सारे जीव के अंदर बैठे हुए भगवान। जब भगवान महतत्व में, ये जो कारण दक्षिणा विष्णु कारण समुद्र में जब श्वास लेते ना, तो उनके रोमकूपों से जो ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं, उन ब्रह्मांड के अंदर अभी तक सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई होती है, एकदम अंधेरा होता है, उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी नहीं होता है। फिर वो कारण दक्षिणा विष्णु अपने शरीर के जल से उसको आधा भर देते हैं, और भगवान का दूसरा पुरुष अवतार गर्भो दक्षाई के रूप में उस समुद्र के ऊपर लेटता है, उसको गर्भो दक्ष समुद्र कहते हैं। उसके ऊपर जब बैठते हैं तो उन गर्भो दक्षाई विष्णु के नाव से एक कमल की नाल निकलती है, और वो डंडी बहुत बड़ी होती है, पूरा जो ब्रह्मांड उसने नया जो ब्रह्मांड बना ना, उसके अंदर ही, अब ये जो भौतिक ब्रह्मांड बना ना उसी के अंदर ये गर्भो दक्षिणा विष्णु नीचे लेटे हुए हैं, और उसके ऊपर एकदम कमल का जो फूल खिला है, बिल्कुल आखिरी जो छोर है ना इस ब्रह्मांड का, वहां तक ये कमल का फूल है। और वो कमल के फूल पे कौन बैठते हैं, ब्रह्मा जी बैठते हैं वहां पर ब्रह्मा जी को भगवान प्रकट करते हैं, और ब्रह्मा जी बहुत बहुत वर्षों तक तपस्या करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि भगवान मुझे सृष्टि को निर्माण करने के लिए, इस सृष्टि का सृजन करने के लिए आदेश दे रहे हैं। तो भगवान इस महतत्व में, जो भी महतत्व में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, कौन सी, आंख कान नाक त्वचा रसना, यानी आंख कान नाक ये चमड़ी स्किन और टंग ये, और 5 कर्म इंद्रिया, हाथ पैर जुबान, लिंग तथा गुदा, ये 10 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, स्वाद, गंध और स्पर्श कितने हो गए? 15, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 20 हो गए। उसके मन, बुद्धि, अहंकार 23 और एक है गुण। ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं कि भाई इसी के द्वारा आपको सृष्टि का निर्माण करना है। ये महत्त्व है और ये इंग्रेडिएंट्स दे दिए ब्रह्मा जी को। भगवान ने आदेश दिया कि अब सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने अब जितने जीव, जैसे पहले जो भी जीव कारण दक्षिण विष्णु के अंदर थे ना, जिन्होंने अपने अपने कर्मों के अनुसार, अब क्योंकि प्रलय के बाद वापस से, क्योंकि जब तक जीव की मुक्ति नहीं होती है तब तक उन्हें वापस से इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, तो पिछले जन्मों में जो जो कर्म किए थे उसके अनुसार सारी योनियां बना दी ब्रह्मा जी ने। भगवान को बोला, आपने जो इंग्रेडिएंट्स दिए थे उनके अनुसार मैंने सबको बना दिया है, परंतु वो चलायमान नहीं हो रहे हैं। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं होंगे, ये लो मेरा एक अंश, एक सफुलिंग, मेरा एक प्रकाश आत्मा के रूप में वो सब जीवों के हृदय में डाल दो। तो ब्रह्मा जी ने सबके अंदर भगवान के एक अंश आत्मा को फिक्स कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने जब आत्मा डाल दी तब भी वो सब चलायमान नहीं हो रहे थे। फिर ब्रह्मा जी परेशान हो गए और गए भगवान के पास, बोले, भगवान आपने जो आत्मा दी थी ना वो मैंने सबके अंदर फिट कर दी, परंतु फिर भी सब चलायमान नहीं हो रहे हैं, अब क्या करूं? तब ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, अब तुम कुछ मत करो, अब मैं करूंगा। और स्वयं भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में विराजमान हो गए। तभी समस्त जीव जलायमान हुए। जब तक, जिस तरह से शरीर तब तक चल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, सक्रिय नहीं हो सकता जब तक उसको आत्मा का पावर प्राप्त न हो, उसी प्रकार आत्मा तब तक नहीं चल सकती जब तक उसको परमात्मा का पावर प्राप्त न हो। जब तक परमात्मा का पावर, परमात्मा की शक्ति उसको प्राप्त नहीं होती तब तक आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है। जैसे आपके घर में यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको चलाने के लिए आवश्यक है कि आपका जो सर्किट है जिसके अंदर आप प्लग लगाओगे उसके अंदर पावर होना चाहिए, है ना। जब उसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे तभी आपका इंस्ट्रूमेंट चलेगा। लेकिन यदि उस पावर का कनेक्शन जो रियल जनरेटर है उससे, अगर जो पावर हाउस है जहां से बिजली आती है वहां से अगर इसका कनेक्शन कट जाए तो उससे भी तो पावर नहीं मिलेगा ना। उसी तरह से परमात्मा को, यदि जब तक आत्मा को पावर नहीं देते हैं तब तक आत्मा भी शरीर के अंदर रहकर कुछ नहीं करती। इसीलिए जैसे आत्मा के बगैर शरीर का कोई महत्व नहीं है, वो मृतक कहलाता है, उसी प्रकार शरीर के अंदर रहते हुए आत्मा का कोई महत्व नहीं है यदि उसका कनेक्शन भगवान के साथ कट हो जाए। यदि भगवान के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है तो वो आत्मा भी निर्जीव है। वो जीव दिखता है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, लेकिन यदि वो भगवान का भक्त नहीं है तो फिर वो मृतक देह के समान है। श्रील प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं कि जिस शरीर के अंदर आत्मा नहीं होती है, उस शरीर में चाहे पहले कितना ही बल क्यों न हो, कितनी ही सुंदरता, ज्ञान क्यों न हो, अब उसका कोई महत्व नहीं है। इवन अ चाइल्ड कैन किक ऑन हिज फेस, है ना, एक छोटा बच्चा भी उसके मुंह पर लात मारकर चला जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा। जब उसके अंदर भगवान का अंश आत्मा होगी तब तो वो कितने ही सारे ऐसे बच्चों को उठा के पटक के फेंक सकता है, परंतु यदि उसके अंदर आत्मा नहीं है तो कोई बच्चा भी उसको मुंह पे लात मार के चला जाए वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, चाहे वो रावण जितना महाशक्तिशाली पराक्रमी ही क्यों न हो। उसी तरह यदि किसी आत्मा का कनेक्शन भगवान से कट है, यदि कोई आत्मा भगवान की भक्ति नहीं करती है तो वो आत्मा भी किसी काम की मृतक के समान है। वास्तव में शास्त्र तो यहाँ तक कह देता है कि ते मृत्यु लोकम भूभार भूता, ये वास्तव में धरती के ऊपर बोझ है वो व्यक्ति जो संसार में मनुष्य का देह प्राप्त कर लेते हैं परंतु भगवान की भक्ति नहीं करते। संत कहते हैं
जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी।
जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते, जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करते, वो व्यक्ति वास्तव में चलते फुरते लाश हैं। जीवन शव समान सो प्राणी, जैसे एक शव होती है यदि वो चलने शुरू कर दे तो हम क्या कहेंगे भूत जा रहा है। उसी तरह वो जीव जिसके अंदर आत्मा भी है परंतु वो यदि भगवान का भजन नहीं करता तो ऐसा ही है जैसे एक मुर्दा चल रहा है। इसलिए भगवान ने कहा गुड़ाकेश, जिसके अज्ञान का अंधकार नाश हो गया है केवल वही इस बात को रियलाइज कर सकता है। शास्त्र कहता है वो आंखें चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो यदि वो भगवान के दर्शन नहीं करती हैं तो वो मोर के ऊपर बने हुए एक निशान की तरह है। बस वो कर्ण जो कथा को श्रवण नहीं करते बल्कि लोगों की निंदा को श्रवण करते हैं, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं, वो यूं समझो सांप और बिच्छुओं के बिल हैं। वो कर्ण कर्ण कहलाने के योग्य नहीं है जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करते, वो मुख जो भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता वो तो मेंढक की तरह केवल टट्टर करता रहता है। तो ये इंद्रियां तभी सार्थक हैं, यह शरीर तभी सार्थक है जब हम इसको भगवान की भक्ति में उपयोगी करते हैं। वास्तव में भक्तों भगवान ने यह शरीर दिया है भक्ति करने के लिए। हमारे शरीर का मनुष्य देह का डिजाइन भगवान ने इस तरह से बनाया है कि हम इस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करें। ये हाथ भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि हम भगवान का श्रृंगार कर सकें, भगवान की आरती कर सकें, भगवान के सामने इन हाथों को जोड़ सकें, कीर्तन में इन हाथों से क्लैप कर सकें। यह आंखें भगवान ने ऐसी बनाई हैं कि हम इससे भगवान के दर्शन कर सकें। ये मुख की रचना भगवान ने ऐसे की है कि हम इसके द्वारा भगवान का नाम उच्चारण कर सकें। यह कर्णों की रचना भगवान ने देखो दो कान दिए हैं, क्योंकि दो कान इसलिए दिए हैं कि भगवान की कथाओं को दोनों तरफ से श्रवण करते जाएं। आज हमारे पास जो सुंदरता है वो कृष्ण के कारण है, जो पराक्रम है वो कृष्ण के कारण है, जो तेज है वो कृष्ण के कारण, जो बुद्धि है वो कृष्ण के कारण है, जो यश है वो कृष्ण के कारण है, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कृष्ण के कारण है। इसीलिए वास्तव में एक जीव का यदि कोई कार्य है तो वो यह है कि वो भगवान की भक्ति करे। तो यहाँ भगवान कहते हैं अहम आदिश मैं ही आदि हूँ, हर एक वस्तु का हर एक व्यक्ति का हर एक जीव का आदि में हूँ। मध्यम च, मध्यम मतलब सेंटर में, जब वो इस भौतिक जगत में रहता है तब उसे हर एक वस्तु उसके जीने की हर एक वस्तु मैं प्रोवाइड करता हूँ। मतलब एक जीव को जीने के लिए जो जो वस्तु चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खाने के लिए अन्न और जल चाहिए, जिसके बगैर जीव नहीं रह सकता, उसकी समस्त आवश्यकताएं केवल भगवान ही प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी साइंसदान आज तक अन्न का एक दाना नहीं बना सका, कोई बड़े से बड़ा साइंसदान आज तक ये जो सूर्य प्रकाश नहीं बना सका, और ना ही ये वॉटर, इस तरह से जो सूर्य जो है वो गर्मी में समुद्र के जल को बादल बनाता है और फिर वर्षा होती है, ये सब भगवान ही कर सकता है। जीव जो है वास्तव में भगवान की शक्ति पर ही आश्रित है और जीव को यह स्वीकार करना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो जी रहा हूँ वो भगवान की कृपा से जी रहा हूँ। तो उसका भगवान का धन्यवाद करने के लिए जीव को अवश्य भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कहते हैं अहम आदेश मध्यम च भूतानाम अंत एव च, और फिर समस्त जीवों का अंत भी मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही रुद्र रूप में इस भौतिक जगत की प्रलय कर देता हूँ। तो जो कुछ भी भौतिक जगत में है, जो जिसके कारण है, चाहे वो शुरुआत है, चाहे मध्य है, चाहे अंत है, उसमें भगवान ही का एक अंश परमात्मा के सूरत में है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हरि भक्ति सदोदय में एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है भगवत भक्ति हीनस्त जाति शास्त्र जप तप। भगवत भक्ति हीनस्य, अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर भगवान की भक्ति का गुण नहीं है, यदि वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, चाहे वो बहुत ही उच्च जाति में हो, उसका जाति बहुत ही उच्च जाति में हो, शास्त्र बहुत बहुत ज्ञान उसने प्राप्त किया हो, सारे शास्त्रों को रट लिया हो, बहुत जप किया तपस्या किया, परंतु भगवत भक्ति ही नष्ट, लेकिन उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो कैसे है? अप्राणस्य इह देहस्य। जिस प्रकार कोई देह हो उसके अंदर प्राण न हो, और अगर उसके अंदर प्राण नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उसको कोई सजाता है, उसको बहुत सारे आभूषण पहनाता है, उसको हार पहनाता है, ज्वेलरी अच्छे से साड़ियां पहनाता है, माथा पट्टी लगाता है और सुंदर श्रृंगार करता है, तो अप्राणस्य इह देहस्य मंडनम लोकरंजनम, कि ये क्या है? ऐसा ही है कि अगर आपके अंदर बाकी सारे गुण हो, उच्च जाति में आप पैदा हुए हो, बहुत बड़े परिवार में आपका जन्म हुआ हो, आपने बहुत सारी विद्या प्राप्त कर ली हो, आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जप कर लिया हो, तपस्या कर लियो, लेकिन यदि भगवान के प्रति आपके अंदर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते हो, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करते हो, तो वो सब ऐसे ही है। आपके बाकी जितने भी गुण हैं वो सब ऐसे ही हैं जैसे मृतक देह पर शोला श्रृंगार किया गया हो। कोई लाभ नहीं है मृतक शरीर के ऊपर श्रृंगार करने का। उसी तरह अगर भक्ति नहीं करते हो तो आपकी सारी जितनी भी बाकी क्वालिफिकेशंस है वो सब धूल में मिलाने के कारण लायक है। यही बात भागवतम कहती है, धर्मस्य ही निष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान की भक्ति में आपकी रुचि नहीं है, यदि भगवान की पवित्र नाम के जप करने में आपकी रुचि नहीं है, यदि भगवान की भक्ति, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में रुचि नहीं है, फिर आप चाहे जो भी करते हो, चाहे कितना ही धर्म का पालन क्यों ना करते हो, चाहे अपने सारे कर्तव्यों को बहुत ही सुंदर तरीके से क्यों ना करते हो, वो सब श्रम एव ही केवलम, निरी व्यर्थ का श्रम है, कोई उसका कुछ फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। मनुष्य जीवन का एक ही लाभ है, मनुष्य जीवन का केवल एक ही लाभ है कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, क्योंकि हमारा अस्तित्व भगवान के कारण है। यही बात आज भगवान हमें बता रहे हैं, अहम आत्मा गुणाकेश, कि मैं आत्मा हूँ, मेरे बगैर किसी जीव का कोई महत्व नहीं है। अहम आदेश मध्यम च भूतानाम अंत एव च, हर एक जीव की शुरुआत में हूँ, हर एक जीव हर एक वस्तु का मध्य में हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। तो हमें भगवान के प्रेम से
भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पवित्र नाम का प्रेम से उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारी आत्मा को आनंद प्राप्त होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।